بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام گفتگو کے ساتھ نعیم بلوچ حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم دینی موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب محمد رفیع مفتی صاحب۔ تو رفیع صاحب، آج ہم جس موضوع کو زیر بحث لائے ہیں وہ قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جن میں یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے۔ تو یہ جو جسے چاہے بخشنا اور جسے چاہے عذاب دینا، یہ اس کا مفہوم آپ سے ہم نے پوچھنا ہے، اور میری گزارش ہوگی کہ آپ قرآن مجید کے وہ مقامات بھی سامنے رکھ لیں اور پھر اس پر ہمیں ایجوکیٹ کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں متعدد آیات اس طرح کی ہیں جن سے خدا کی مشیت کا پتہ چلتا ہے، اس کے مرضی کا۔ تو بخشش اور عذاب کے حوالے سے بھی آتا ہے، ہدایت کے حوالے سے بھی یہ بات آتی ہے، ہدایت و گمراہی کے حوالے سے بھی۔ تو بخشش اور عذاب کے حوالے سے جو بات آیات ہیں، ان میں سے مثلا سورہ بقرہ کی 284 جو آیت ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ وہ الفاظ اس کے یہ ہیں: للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ یہ ہے: للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، یعنی اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ وہ ان تبدو ما فی انفسکم، خواہ تم ظاہر کرو ان باتوں کو جو تمہارے دلوں میں ہیں، او تخفو ہو یا ان کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ ان کا محاسبہ کرے گا، یعنی اللہ تمہارا ان باتوں پر محاسبہ کرے گا، یعنی تم سے پوچھے گا کہ تم نے کیا نیتیں اور کیا ارادے دل میں چھپائے ہوئے تھے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جس کے حوالے سے آپ کا سوال ہے۔ آگے فرمایا: وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اسی طرح کی نا سورہ فتح کی آیت بھی ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیتیں جو ہیں یہ ظاہر ہے ایک پورا مضمون بیان کر رہی ہیں، لیکن ہمارا جو اصل موضوع ہے اس سے متعلق اس کے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔
تو اس میں پہلا سوال تو رفیع صاحب یہ بنتا ہے کہ انسان کو جس طریقے سے تخلیق کیا گیا ہے نا، اس میں جبر کو وہ ناپسند کرتا ہے، یعنی کہ وہ نہیں چاہتا کہ جو وہ نہیں کرنا چاہتا وہ اس سے کرایا جائے۔ اور یہ آیت تو سیدھا سادھا ہے کہ جس کو چاہے اللہ بخش دے اور جس کو چاہے چلے بخش دے گا تو بندہ خوش ہو جائے گا، لیکن جس کو چاہے عذاب دے۔
صحیح ہے، تو یہ ٹھیک بات ہے کہ انسان جبر کو پسند نہیں کرتا، لیکن یہ بات کہ کیا اس میں جبر کی بات کی گئی ہے یا نہیں، اس کو جب ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں نا کہ یہ آیت، اس کے مخاطبین کون تھے اور یہ الفاظ کس سیاق و سباق میں بولے گئے ہیں، کس پہلو سے بولے گئے ہیں، تو پھر یہ اشکال اس کے بارے میں نہیں ہوتا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید جس قوم میں نازل ہوا یا جس ماحول میں نازل ہوا تھا وہ شرک کا ماحول تھا، یعنی کہ اہل مکہ جو تھے یا اہل عرب جو تھے وہ مشرکین تھے، تو شرک کرتے تھے۔ ان کا کچھ عقیدہ تھا کہ بھئی ہمارے دیویاں، ہمارے دیوتا جو ہیں یہ خدا کے محبوب لوگ ہیں، بلکہ دیویوں کو تو کہتے خدا کی بیٹیاں ہیں، اور یہ ہم اگر ان کی عبادت کریں گے تو وہ خدا سے ہماری بخشش کروا لیں گی۔ بخشش کروا لیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی مرضی نہیں چلنے دیں گی، اپنی مرضی چلائیں گی۔ تو اب یہ ہے کہ یہ بتایا گیا کہ نہیں، جس طرح تم سمجھ رہے ہو جو تمہارے عقائد ہیں، ان عقائد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان آیتوں کو جب دیکھیں گے نا، تو اس میں تو پھر یہ بنے گا کہ جو تمہارے مذمومہ خیالات ہیں، یعنی جو تم نے अपने ख्यालात गढ़े हुए हैं वो नहीं चलेंगे, बल्कि अल्लाह ताला अपनी मर्जी से जिसको चाहेगा बख्शेगा, जिसको चाहेगा अजाब देगा, और अपनी मर्जी से वो करेगा। तो असल में इंसान भी कह लें कि जब कोई, अगर ये लफ्ज़ इंसान के हवाले से सोचे जाएँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा, तो इंसान पर मुख्तलिफ कैफियतें तारी होती हैं और उसकी कुछ सिफात होती हैं, कुछ असूल होते हैं, कुछ उसके मायारात होते हैं। तो इंसान या तो किसी कैफियत में जो चाहता है वो करता है, या अपनी सिफात के मुताबिक जो चाहता है करता है, ठीक है, या अपने मफादात मजबूरियों के वाले से जो उसकी मर्ज़ी होती है वो करता है। ऐसा हो सकता है हम किसी लालच में गिरफ़्तार हो जाएँ और उस लालच की वजह से फिर हम ये मर्ज़ी बना लें कि मुझे ये काम करना है, जायज़ हो ना जायज़ हो, ठीक है ना। इसी तरह किसी दबाव का शिकार हो जाए तब भी ऐसा मामला हो जाता है कि हमारी मर्ज़ी जो है, हमारी पसंद जो है, उसको ड्राइव कर रही होती हैं वो कुव्वतें जो खारिज से हमारे ऊपर असरअंदाज होती हैं। यहाँ ज़ाहिर है खुदा के हवाले से बात है, तो मुशरिकीन का तो ये ख्याल था कि खुदा की मर्ज़ी को कंट्रोल करेंगे वो देवियाँ कि जिनकी हम पूजा करते हैं। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि नहीं, मेरी मर्ज़ी जो है उसको कोई ड्राइव नहीं कर सकता, मैं खुद ही अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करूँगा। खुदा की मर्ज़ी जो है क्या वो कैफियतों का शिकार होती है? नहीं, खुदा पर कैफियतें तारी नहीं होती। जैसे एक इंसान गुस्से की हालत में, खुशी की हालत में, दबाव की हालत में, लालच की हालत में, हिर्स की हालत में मुख्तलिफ हालतें तारी होती हैं, ये खुदा पर कोई हालत इसमें से तारी नहीं होती, ठीक है। तो लेकिन खुदा अच्छी सिफात रखता है, बेहतरीन सिफात रखता है, और हमें ये बताया गया है कुरान मजीद ने इस मज़मून को कि वलहुल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के सारे ही नाम अच्छे हैं। यहाँ नाम से मुराद सिफात है, सारी ही सिफात अच्छी हैं। वो सिफाती नाम का लफ्ज़ भी बोला जाता है ना, कि जो उसकी सिफतों को बयान करने वाले नाम हैं, सारे के सारे देखो अच्छे हैं। और ये भी सिखाया गया कि सुभान अल्लाह का कलमा सिखाया गया, अल्लाह ताला पाक है कि उसमें कोई ऐब हो, कोई ज़रा भर ऐब नहीं है, कोई खामी हो, कोई नुक्स हो, कोई कमी हो किसी तरह की भी, ऐसा नहीं है। और खूबी है, सरापा खूबी ही खूबी है, उसमें तमाम खूबियाँ जो खुदा के शायान शान वो उसमें हैं। अब एक अच्छी ज़ात जब अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करेगी तो ज़ाहिर है उसकी मर्ज़ी उसकी सिफतों से उठेगी ना, तो उसकी सिफतों से उठेगी तो वो फिर जो भी मामला सामने है उसको बिल्कुल मेरिट पर देखा जाएगा, और खुदा की तरफ से जो रहमत की उसका उसकी सिफत है, जिसको उसने कहा कि मैंने जब ये तख्लीक की तो मेरी रहमत मेरे गज़ब पर सबकत ले गई, यानी मेरे यहाँ रहमत जो है उसका कदम आगे है। जो गज़ब है वो तो खुदा का फेल है, वो तो किसी वजह से होगा कि भई किसी बुराई के ख़िलाफ़ खुदा का गुस्सा या गज़ब ज़ाहिर हो, लेकिन रहमत तो उसकी सिफत है, सिफत में दवाम होता है। तो खुदा की ज़ात जो है उसकी रहमत जो है वो उसकी जो तकाजा होगा उसके फ़ैसले उस तरह से होंगे, यानी बख्शिश के मामले में भी रहमत चल रही होगी और अजाब के मामले में भी रहमत का पहलू होगा। रहमत का पहलू मैं इस मानों में कह रहा हूँ, अजाब की वजह अदल है, अजाब की वजह इंतकाम नहीं है या गुस्सा और कहर नहीं है। ये मामला खुदा इस तरह की सिफात नहीं रखता कि खुदा आपे से बाहर हो जाता है, ये नहीं, ये खुदा की
ये बड़ा अहम पॉइंट है। इसको मैं कहता हूँ थोड़ा सा आप इसकी मज़ीद वाज़े करें कि खुदा जो इंसान को अजाब देता है वो गुस्से या गज़ब की वजह के बजाय वो इंसाफ और अदल पर मबनी होता है। ये दो बड़ी अहम नुकात हैं इसको।
सही बात, मतलब वैसे तो ये आता है ना, मग़ज़ूब अलैहिम के अल्फाज आते हैं कि वो कौमें जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ, गज़ब से मेरा नाराज़गी हुई, गुस्सा हुआ, गज़ब का लफ्ज़ तो इसी तरह बोला है, लेकिन इस गज़ब की वो हकीकत नहीं है कि जो इंसानी गज़ब का माना हम लेते हैं ना, इंसानी गज़ब में होता है कि जो जुर्म करने वाले का जुर्म जो है, फ़र्ज़ कीजिए वो 10 यूनिट का जुर्म है, तो जो इंतकाम लेने वाले ने इंतकाम लिया उससे वो 20 यूनिट का इंतकाम ले लिया, हद से आगे बढ़ गया। खुदा के यहाँ ये मामला नहीं है, वो जितना उसका सजा जो उसका हक बनती है वो सजा उस पर जब होती है तो उसको खुदा का गज़ब या उसको खुदा, वो ज़ाहिर अदल भी वही होता है, वो अदल का तकाजा होता है। यानी कि अगर दो अफराद हैं, एक मज़लूम है और एक ज़ालिम है, अल्लाह ताला मज़लूमी का साथ देता है, उसकी रहमत का तकाजा है कि जिसके साथ ज़्यादती हुई है उसका साथ खड़ा हो, और उसका वो साथ दे, जब उसका साथ देगा तो फिर इसका क्या मतलब होगा कि वो जालिम से इसका हक लेकर देगा और जालिम को वो करारे वाकई सजा देगा, जो बनती है सजा उसकी वो देगा। इसी को गज़ब कहा गया है। ऐसा नहीं है कि वो अल्लाह ताला ने फिर जो है इंतकाम की हदी हदें पार कर दी और फिर इस तरह नहीं है। हत्ता कि ये इसमें मैं ये ज़िमरन ये पहलू भी बयान कर दूं कि जो अब्दी सजा का मामला आता है जन्नत और दोज़ख के हवाले से, ये जन्नत में तो हर इनाम है लेकिन अब्दी सजा दोज़ख के हवाले से जो मामला आते हैं, ये भी ऐसा नहीं है कि खुदा ने मामला अदल से आगे कर दिया, यानी कि या अदल के मुकाम से खुदा नीचे उतर आया और अब गज़ब की कैफियत में उसने जो सज़ा 100 साल बनती थी उसको करोड़ों साल पे फैला दिया या हमेशा हमेश के लिए फैला दिया, ऐसा नहीं है। बल्कि आदिलाना सज़ा जो बनती है वही दी। इसीलिए कहते हैं कि जो लोग जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे ना वो ये कह रहे होंगे अल्लाह मनवा लेगा उनसे, यानी उस तरह शहादतें जो भी होंगी हाथ पांव गवाही देंगे और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं कि ये खुदा के ये अदल का तकाजा यही है। यानी ऐसा नहीं कि हम पर कोई जुल्म और ज़्यादती हुई है, खुदा की अदालत से हमें इंसाफ की बजाय जुल्म मिला, ऐसा नहीं। बिल्कुल वो मानेंगे कि ये अदल का तकाजा यही था कि जो हमारे साथ हुई है।
ठीक है, ये बात आपने फरमा दी, लेकिन दुनिया में अगर हमें कोई भी इदारा है हमारे सामने, वो जब भी अपने अपॉइंटमेंट लेटर देता है फ़र्ज़ करें, तो वो ये नहीं कहता कि हम चाहे आपको जब मर्जी बिला वजह आपको टर्मिनेट कर देंगे, वजह बताता है। लेकिन इन आयात में ये जो एब्रप्टली कह दिया है कि बख्श दूंगा जिसको चाहे और अजाब दे दूंगा जिसको चाहे, ये थोड़ा सा क्या अल्लाह की शान का इजहार है या अल्लाह ताला की किस सिफ्त का, इन ख़ास तौर पर इस स्वरूप में अल्लाह ताला की किस सिफ्त का ज़रूर है?
हाँ, ये असल में जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि एक तो ये है कि वहाँ मसला क्या था। वो लोग कह रहे थे कि खुदा की मर्ज़ी को हम कंट्रोल कर लेंगे अपने देवी देवताओं के ज़रिए से।
अच्छा,
ठीक है ना। तो ये उसका जवाब है कि नहीं, वो तो तुम नहीं कर सकते। और मामला फिर होगा किस तरह कि खुदा जो चाहेगा करेगा, तो क्या चाहेगा वो, किस तरह का चाहेगा मामला? तो वो जो चाहेगा वो उसकी आला सिफात का जो तकाजा होगा वो चाहेगा। यानी वो रहमान भी है, वो रहीम भी है, वो वदूद भी है, मोहब्बत करने वाला है, वो जो सरापा खैर है करीम है, वो कर्म करने वाला है। तो उसकी ये सिफात जो पूरी तरह ज़ाहिर होगी और वो मुक्सित भी है, अदल करने वाला है, तो वो अदल करेगा। ऐसा नहीं कि उसका उसकी रहमत खिलाफ़ अदल होगी, यानी अदल को तोड़ देगी, नहीं ये नहीं। या उसका अदल जो है जहाँ वो अदल करेगा वो रहमत को यानी कि यूँ समझे ख़त्म कर देगा, ऐसा नहीं मामला। यानी खुदा के यहाँ वो तवादन इंतहाई यानी कि सूरत में मौजूद है कि जो आदमी मुजरम होता है तो उसके लिए वो आदलाना फ़ैसला कि जिसके जिससे बेहतर आदलाना मुमकिन नहीं है, ठीक है ना। अदल का बेहतरीन तकाजा जो होगा वो उसके लिए किया जाएगा।
अच्छा, ये भी एक पहलू इसमें आता है कि अल्लाह ताला की जो वसत इल्म है वो अहाता किए हुए हर चीज़ को, तो अहाता किए हुए चीज़ को और उसके बाद अपने उस इल्म की बदौलत उसने किसी को जहन्नम की सज़ा दे दी और किसी को बख्श दिया, तो ये इल्म की बुनियाद पर बख्शना और अजाब देना ये तो अमल की बुनियाद पर ना हुआ ना। इल्म आपका है, अमल मेरा है।
नहीं, ये किस जगह से आपने लिया कि इल्म की बुनियाद पर वो ऐसा कर रहा है? उसने तो इल्म की बुनियाद पे करने से बिल्कुल ही रोक दिया अपने आप को, क्योंकि इल्म की बुनियाद पे करने का मतलब ये था कि अल्लाह ने मखलूक तख्लीक की और उसके बारे में गोया कि आप यूँ समझ लें कि ये मखलूक तख्लीक हुई बैठी है और अब अल्लाह तआला ने लिखवा दिया फरिश्ते को कि मेरे इल्म के मुताबिक ये 50 आदमी बुरे हैं और ये 50 आदमी, अगर 100 का हम डाटा लें तो 100 में से ये 50 आदमी अच्छे हैं, तो इनके नाम नोट कर लो, इनको जन्नत में छोड़ो, उनको दोज़ख में छोड़ो। ये फ़ैसला खुदा के इल्म पर मबनी होता। उसने ऐसा बिल्कुल ही नहीं किया। उसने एक पूरी ज़िंदगी दी है और इंसान को कहा है तुम अपना आमाल नमा तैयार करो। ये दरअसल करवा तो वो खुद रहा है, फरिश्तों के ज़रिए से करवा रहे हैं, लेकिन ये अमालनामा जो है ये इंसान ख़ुद तैयार कर रहा है। जब वो कोई लफ्ज़ बोलता है, कोई बुरा लफ्ज़ को अच्छा लफ्ज़, तो वही लिखा जाता है। कोई अमल जब वो करता है तो वो अच्छा अमल हो बुरा अमल हो जैसा भी होता है वही लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि इंसान ने तो किया कुछ नहीं, लिख लिया अपनी तरफ से, ये बिल्कुल ऐसा मामला नहीं है।
अच्छा रफ़ी साहब, ये जो फरमाया गया कि जिसको चाहे बख्श दे और जिसको चाहे, इसमें अल्लाह ताला का एक खौफ जहनों में उजागर होता है कि अच्छा अल्लाह जब चाहे जिसे चाहे वो बख्श दे, और ख़ास तौर पर अजाब वाला, तो अल्लाह का जो एक खौफ का पहलू जो है वो इंसान के ऊपर तारी होता है, तो ये दुरुस्त इसका तासुर है?
ये तासुर बिल्कुल हो सकता है, जब जब आप ये बात कह रहे हैं तो ठीक है, ये तासुर इंसान महसूस कर सकता है कि भई इसमें खुदा जिसे चाहेगा बख्शेगा, तो अब हर कोई ये सोच रहा है कि पता नहीं मुझे बख्शेगा या नहीं बख्शेगा, तरद्दुद उसे हो गया, और जिसे चाहेगा अजाब देगा, हर कोई ये सोच रहा है पता नहीं मुझे अजाब देना है कि क्या मामला है। ये अल्फाज इस तरह से करते हैं। ये मैंने इसको तो वादे कर दिया है कि इसको कहने की ज़रूरत क्या थी कि भाई मेरे ऊपर किसी की मर्ज़ी नहीं चलेगी, मैं अपनी मर्ज़ी से करूँ।
ठीक,
अच्छा, लेकिन इस बात को कहने का असलूब ये भी हो सकता था, जैसे कुछ तफसील से हम बयान कर रहे हैं समझने समझाने के लिए, ये इंसानी अंदाज़ है। जैसे हम कह रहे हैं ना कि खुदा अपनी आला सिफात के मुताबिक जो बेहतर जानेगा वो करेगा, ठीक है, तो ये खुदा ज़ाहिर बेहतरीन अल्फाज में ये बात कह सकता था कि देखो मेरी सिफात अच्छी हैं और मैं अच्छी सिफात के साथ अच्छे फैसले ही करूँगा, मेरे जो फैसले होंगे मुनसफाना होंगे, ये होंगे वो होंगे, रहमत भरे होंगे, कोई ऐसा नहीं गज़ब, और उसका नहीं असूल मेरा कि मैंने गज़ब करने के मूड में बैठा हुआ हूँ, तो ऐसा नहीं, बल्कि ये तो इसी तरह का सलूक है कि वो जैसे चाहेगा। क्यों है? खुदा की जो अजमत का मामला है वो इस चीज़ को लाजिम करती है कि जब खुदा के हवाले से बात हो रही है या खुदा कलाम कर रहा है तो उसकी शान के मुताबिक वो कलाम होगा, ऑटोमेटिकली होगा। खुदा इस कायनात का हाकिम है, जैसे कि ये आयत जो हमने पढ़ी थी ना, तो उसमें ना लिल्लाह मीरासु समावात वलअर्द, मतलब ये आयत, और ये है कि ज़मीन व आसमान में जो कुछ है सब अल्लाह का है, ये आयत हमने पढ़ी थी ना, तो ये अल्लाह की मलकियत है, उसकी आकमियत है, वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। तो ये जो ये अब खुदा के लिए जो इंसानी सतह पर बोली जाने वाली ज़बान है वो उसकी शायान शान नहीं है। वो बात उस समय तो आ जाएगी जब खुदा के लिए सारे अच्छे नाम हैं, और जब खुदा आदिल है, और जब खुदा हमें अदल करने को कह रहा है, और जब वो कह रहे थे कि वो रोज़े इंसाफ होगा, जिस दिन मैं इंसाफ करूँगा, अदल यानी तख्ते अदल पर बैठूँगा और मैं फ़ैसले करूँगा लोगों के माबैन, और बेहतरीन फ़ैसले होंगे वो, बल्कि वो कुरान मजीद में आता है कि जब ये सारा फ़ैसले हो चुके होंगे, मैदान हशर खाली हो जाऊँगा होगा, तो उस वक्त वकील अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये कहा जाएगा, सारा शुक्र अल्लाह के लिए है जिससे ये सारा मामला हुआ। किस तरह? कि अल्लाह ने इंसान को तख्लीक किया, ये दुनिया की आजमाइश बर्पा की, इसमें 100 तरह के नशेब व फराज हुए। इसको अगर हम देखें वाकयात की नज़र से देखें तो वाकयात तो बड़े बड़े जुल्म हुए हैं, फ़र्द पर कौमों पर जुल्म हुए हैं, पीस दिया एक कौम ने दूसरे को, और डाका जनी रही है, राहजनी रही है, बहुत से वाकयात हुए, अच्छे वाकयात भी हुए हैं, लेकिन वो निस्बतन कम है। और उसके बाद जब उस सारी मखलूक को मैदान हशर में इकट्ठा किया गया, खुदा ने अदालत लगाई और फैसले कर दिए, और फिर हक बहकदार रसीद यानी नेक लोगों को उनका हक मिल गया और जालिम लोगों को उनका हक मिल गया जो उनका हक बनता था, तो अब फिर खुदा के बारे में कही जाने वाली बात कौन सी है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अल्फाज आते हैं कि सारा शुक्र उस अल्लाह के लिए है जो जहानों का परवरदिगार है। क्या खूब स्कीम बनाई, क्या खूब नतीजा निकला, और क्या अच्छा वाकया हुआ, यानी कि सारी बात जिसे हम एक ट्रेजिक स्टोरी कह सकते हैं वो बिल्कुल ही एक तरबिया बन गई, यानी कि बिल्कुल खुशगवार बात बन गई कि भाई जो जन्नत में वो लोग गए कि जो इसके हकदार थे कि वो जाते, और सज़ा उनको मिली जो सज़ा के हकदार थे।
बहुत शुक्रिया रफ़ी साहब, बहुत सारी बातें इससे मालूम हो गई और हम इस मौजू को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और अगले नशिस्त के लिए नाज़रीन से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।
आइए अपना हाथ बढ़ाइए, इल्मी, दावती और तालीमी प्रोग्रामों में तावुन कीजिए। आइए दीन की खिदमत में शामिल होकर अपनी आकबत संवारें। आओ मिलकर इस मुनादी का जवाब बने। या अय्युहल्लज़ीन आमनू कूनू अंसारल्लाह, ईमान वालों अल्लाह के मददगार बनो उसके दीन की खिदमत करके।